ಜಯ ಗೋಪೀಜನಬಲ್ಲವ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಜನಬಲ್ಲವ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಜನಬಲ್ಲವ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೌರಾಂಗ ಗಾಂಧ್ರಿಧಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಜಿ ಕಿ ಜಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಲಪ್ರಜಾಚರ ಸ್ತೋತ್ರ ಶತ ಶ್ರೀ ಸಿಮಾದೇ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಲಪ್ರಹಂಸ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಠಾಕುರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ ನಮಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಜಯ ಸಮವೇತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ ನಿತಾಯ ಗೌರ್ಮಾನಂದೇ ಹರಿಗೌರ್ ನಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಮಪಿ ಶಚಿಪುತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪಂ ರೂಪಂ ತಸ್ಯಾಗ್ರಜಂ ಮರುಪುರೀಂ ಮಾಥುರೀಂ ಗೋಷ್ಠವಾಟಿಂ ರಾಧಾಕುಂಡ ಅಗ್ರಿವರೋ ಮಹೋ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ತಜಸ್ಯ ಪ್ರತಿದಕಿಪಯಾಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ತಂ ನತೋ ಯಸ್ಮಿ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುವೇವ ಚ ಪೈತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾ ಅಪರಾಧಲಕ್ಷ್ಯೈ ಕ್ಷಿಪ್ರಾದಿ ಕಮಾದಿ ತರಂಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೃಪಾಮಯೀತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನೆ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಆನಂದಲೀಲಾಮಯ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಹೇಮಾವದಿಬ್ಬ ಛವಿಸುಂದರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಮಹಾಪ್ರೇಮರಸಪ್ರದಾಯ ಚೈತನ್ಯಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಸಾ ಸುಖ ನಿವೃತ ಚೇತಸ್ತದ್ಬುದ್ಧ ಸ್ತನ್ನಭಾವ ಅಪ್ಪಜೀತುರುಚಿಲಾಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಾರಸ್ತದಿಯಂ ಬೇತುನದು ಕೃಪಾಂಗದಸ್ತತ್ತದೀಪಂ ಪುರಾಣಂ ತಮಖಿಲ ಬ್ರಿಜಿಂಗ್ನಾಂ ಬಸಸೋನು ನತೋಯಸ್ಮಿ ಭವೇ ಭವೇ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿ ಪಾದಸ್ತವ ಜಾತಿ ತಥಾ ಕುರುಷ ದೇವೇಶ ನಾಥಸ್ತನ ಜತ ಪ್ರಭು नाम संकीर्तनं दिश्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामं दुख समनस्तु तं नमामि हरि परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टप्रैष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। श्रीमद्भागवतम नवस्कंद अध्याय छह श्लोक नंबर 54। तत्र त्वत्वा तपः तीक्ष्णं आत्मदर्शनं आत्मवान् सह एव अग्निभिः आत्मनां जुजोज परम आत्मनि। तत्र तत्र तपस्वीनां तीक्ष्णमात्मदर्शनमात्मवान् सहैवाग्निभिरात्मानं जुजोज परमात्मने। तत्र तप्ता तपस्तीक्ष्णं मात्मदर्शनमात्मवान् सहैवाग्निरिवात्मानं जुजोज परमात्मने। तत्र तत्त्वा तपस्तीक्ष्णं मात्मदर्शन आत्मवान् सहैवाग्निभिरात्मानं जुजोज परमात्मने। बोलिए आप सब। तत्र जंगल में तप्त्वा तपस्या करते हुए तपः तपस्या के नियम तीक्ष्णम अत्यंत कठोर आत्मदर्शनम आत्म साक्षात्कार में सहायक आत्मवान आत्म से अभिज्ञ सह साथ में एवा निश्चय ही अग्नि भी अग्नियों के आत्मनाम स्वयं को जुजोज लगाया परम आत्मनि परमात्मा में अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। जब आत्मवान सोहोरी मुनि जंगल चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तरह मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया। तात्पर्य, मृत्यु के समय अग्नि स्थूल शरीर को जला डालती है और यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तो सूक्ष्म शरीर का अंत हो जाता है, केवल शुद्ध आत्मा बचा रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, तिक्तांग देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोहोर्जुनो। यदि मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के भौतिक देह के बंधन से मुक्त होता है और शुद्ध आत्मा बना रहता है तो वह भगवान की सेवा करने के लिए भगवत धाम वापस जाता है। तिक्तांग देह पुनर्जन्म नेति मामेति, वह भगवत धाम को वापस जाता है। इस तरह ऐसा लगता है कि सौभरी मुनि वह पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई थी। अध्याय का नाम दिया है सौभरी मुनि का पतन। मुनि फिर उसका पतन। शास्त्र खतरनाक है। भक्ति रास्ता में अगर चलना चाहते हैं तो अगर उसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो पद पद पर विपद बना रहता है और उस विपद को देख करके अगर कोई इस प्रकार विपदग्रस्त हुए हैं उसको देख करके हमें उपहास भी नहीं करना चाहिए। उपहास किया था अंधा था। जब सोभरी मुनि उससे लड़की मांगने गया, मजाक कर दिया, जिसका पसंद है ले लो, तो अपना सिद्धि के द्वारा उसका 50 लड़की को लेके भाग गया और बाद में अपना जोगबोल में जो संसार का निर्माण किया वो देख कर करके मानधाता भी दुखी हो गया। बोला, इतना पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होने के बावजूद भी सोहोरी का जो सुख है वो हमारे पास नहीं है और इसका पतन था। ब्रह्मचारी हो गया गृहस्थ, ये जो पतन लिखा गया यहाँ पर भागवत में, ब्रह्मचारी बनने के बाद अगर कोई शादी करता है उसको पतन कहा जाता है भागवत के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। और पतन का कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दर्शाया, क्या दर्शाया, वैष्णव अपराध। यदि कोई ब्रह्मचारी शादी नहीं करेगा अगर उसका वैष्णव अपराध ज्यादा होता है तो शादी करके वो अपना उसको अपराध का भोग करता है, तो भोग पूरा हो जाता है तो सोभरी मुनि जैसे निकल जाता है। इसलिए ये देख करके और कोई ब्रह्मचारी शादी भी कर लिया, शास्त्र दृष्टि में आकर बोला भाई इसको पतन हो गया, ठीक है, फिर भी उसका क्रिटिसाइज व अवमानना नहीं करना चाहिए। क्या क्या ठीक है, चलो भगवान की इच्छा है, हो गया। अभी उसको वो कैसे आगे उद्धार होगा उसका वर्णन सोभोरी ऋषि के द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर एक दिन भी इस्कॉन मंदिर में आकर के बिताया और वो एक दिन भगवान का प्रसाद अगर खाता है, एक बार भी भगवान के सामने नाचता है भक्तों के साथ, तो अंतिम स्टेज में शायद वो अपना आप को उद्धार कर लेगा। क्योंकि भगवान का महत्व है, ये जो संस्था है, एक भगवान का शुद्ध भक्तों के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए उनका शुद्धता जो है उस भक्तों में जिस दिन तो आता है उस दिन तो उसका तो माइंड फ्रेश रहता है, भले बाद में कुछ गड़बड़ होता है, नहीं जिस दिन वो आता है उस दिन तो मनोभाव लेके नहीं आता है ना। उस मनोभाव में अगर एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, वही कृष्ण नाम उसका अंतिम स्टेज में फलदायक हो जाता है। इसलिए कहा गया है, अपि चेतो सुदुराचारो भजते मामण्य भाको साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही स क्षिप्रं भवन्ति धर्मात्मा सच्छन्ति निगच्छन्ति कुन्ते उपति जानिह नमा भक्ते प्रणिष्यति। तुम प्रतिज्ञा करो, मेरा भक्त को भी नाश नहीं होता है। अपि चेतो सुदुराचारो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका व्याख्या करते हैं, उनका व्याख्या कुछ अलग प्रकार का है। भक्ति विनोद ठाकुर का रसिक रंजन है, उसका व्याख्या कुछ अलग प्रकार का है। प्रभुपाद जी जो भाष्य किया उसका भी कुछ अलग प्रकार का है। उन्होंने कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर भक्त बनते हैं, किसी गलत संगत के कारण गलत कार्य में लिप्त भी हो जाता है, फिर भी उसे निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी वो उससे उबार सकता है, लेकिन आप जो निंदा कर रहे हो आप उबार नहीं पाओगे। वो तो निकल सकता है कोई भी, आप निंदा का कारण आपका पतन हो जाएगा, आप वहां से निकल नहीं पाओगे। इसलिए उसका संगति ना किया करो, उससे दूर रहो। संगति ददाति प्रतिगृहति गुज्जमक्खति पिच्छति भुंगते भोजयते चैव सर्वविध प्रतिलक्षणम। ये जो प्रीति का तारतम्य हिसाब से संग का तारतम्य होता है। प्रीति जितना घनिष्ठ होगा संग उतना घनिष्ठ होगा। इसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मेंबरशिप बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनमें अगर जैसे हमारा प्रीति होगा उसका विषय संस्पर्श उतना हमारे ऊपर अटैक करेगा। अगर कर्तव्य कर्म संपादन करने की इच्छा से अगर हम कुछ कर्म करते हैं तो उसका संसर्ग हमारा पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अगर उससे हमारा ज्यादा घनिष्ठता हो जाता है और वो विषयी विषयी रह जाता है तो क्या होगा, उसका विषय संस्पर्श हमारे ऊपर अटैक करेगा। ये जो सर्वविध प्रीति लक्षण, ये सर्वविध प्रीति भक्तों का साथ ही करना चाहिए। बाकी जो व्यक्ति ऐसे है उसका साथ उसी हिसाब से व्यवहार किया करो। दुकानदार को भी आपका साथ दोस्ती नहीं करेगा, उसका दोस्ती पैसा का साथ है। कभी आपको कुछ विपद भी हो जाए तो आप उससे कुछ सामान मांगने जाओगे वो आपको देने वाला भी नहीं है। इसी प्रकार अगर किसी का इस प्रकार कोई कंडीशन हुआ है तो उसे प्रीति मत रखो, लेकिन उसको निंदा मत करो। अगर प्रीति रखेंगे तो क्या बोलते हैं, जोशी क्रिया मृगे सूचो। जो स्त्री संग कर रहा है उससे जो स्त्री संग का आलोचना कर रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। स्त्री संग करने वाला व्यक्ति के साथ संग किया जा सकता है, लेकिन स्त्री संग का जो आलोचना कर रहा है उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। ये संग इतना खतरनाक होता है। इसलिए अगर ऐसे समय में उससे बाहरी सम्मान प्रदान करते रहे, अंदर का जो प्रीति उनका साथ ना किया करे। जब वो अपना कर्मफल भोग करते करते किसी कारणवश जो उसका भोगगा ले, वो पारब्ध कर्म हो चाहे अपारब्ध कर्म हो, जो भी कर्म के द्वारा उसका कर्मफल उसका नियति में आ चुका है, उसका जब फल समाप्त हो जाएगा तो वहां से निकल जाएगा। उस समय उसको सहायता करके शरण में लगा दो। एक व्याख्या दिया है विश्वनाथ चौकी ठाकुर, भक्तिनाथ ठाकुर का व्याख्या है। उन्होंने कहते हैं दुराचारी व्यक्ति को भी अनन्य भाव से भगवान का भजन कर नहीं सकता है, और अनन्य भजनकारी व्यक्ति को भी दुराचार हो नहीं सकता है। क्या सिद्धांत है देखो, भक्तिनाथ ठाकुर गुरुदुम में बैठा हुआ है, गुरुदुम धाम में, देवराज इंद्र का सभा हो रहा है, वैष्णव इष्ट गोष्ठी, गीता का व्याख्या चल रहा है, इस श्लोक को उत्थापन किया गया है, द्वादश महाजन वहीं पर विराजित है, सब देवता लोग विराजित है, प्रश्न किया गया है। ये भगवान वासुदेव कृष्ण गीता में कहते हैं उपी चे तो सुदुराचार हो, तो दुराचार व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान वासुदेव का भजन कैसे कर सकते हैं, और अनन्य भजन परायण व्यक्ति दुराचार कैसे हो सकता है, ये दोनों विरोधाभास का सामंजस्य क्या है। सब महाजन लोग विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार करते कर किसी का विचार हो ही नहीं रहा है। बिले जो विसंगतिया, ये विसंगीते का सामंजस्य कैसे हम लोग करेंगे। भक्तिनाथ ठाकुर बैठे हुए हैं गुरुदुम में, उन्होंने अपना सशरीर में जमलोक पहुंच गया, जहां पर सभा आ रहा है जमराज का सभा, वहीं जब बैठे हैं सब, तो गेट का सामने जैसे भक्तिनाथ ठाकुर खड़ा हो गया, वहां पर जितना सब लोग थे सब खड़ा होकर उनको अभिवादन किया। क्यों किया अभिवादन, कि वहां पर जितना सब लोग थे सब वासुदेव भक्त है, भक्तिनाथ ठाकुर राधा भक्त है, कृष्ण भक्त से भी राधा भक्त का श्रेष्ठता है। ऐसा कि शास्त्र शिव जी ने यहां भी कहा है, जो कृष्ण का जो भजन करते वो पापी व्यक्ति है, वो पति जो उनका संगम नहीं करते, स्वनियम स्वनियम द्वादशकम, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या 12 नियम बनाया, बोलकर जो अकेला कृष्ण भजन करता है वो पापी व्यक्ति के साथ हम खनभर भी नहीं रहना चाहते हैं। गौड़ीय सिद्धांत है, तेसो वासुदेव कृष्ण का भजनकारी व्यक्ति और राधा भक्त जाकर वहां उपस्थित हुआ तो सबका सब खड़ा होकर दंडवत किया। भक्तिनाथ ठाकुर धीरे धीरे प्रविष्ट हुआ, आसन दिया गया, बैठे उन्होंने, बोला हम लोग ये समझ नहीं पा रहा है वासुदेव कृष्ण का जो गीता का उपदेश ये क्या है। तो बोला देखो, दृष्टि स्वभाव जनित बपुष्ट देशे न प्राकृत मिह भक्त जनिष पश्चेत गंगा भसां खुलु बुध बुध फैन पंकर ब्रह्म दपत्तम अपगछन्ति नीर धर्म। आप गंगा में नहाओगे उसमें अगर संदास भी जाएगा, आप जहां नहा रहे हो फिर भी आप वहां डुबकी लगाओगे गंगा आपको पवित्र करेगा, कि ब्रह्म दवती मपगछन्ति नीर धर्म, उस पानी का धर्म ही है कि उसमें ब्रह्म निवास करते हैं। तो जहां पर ब्रह्म का निवास है वहां अगर डुबकी लगाया जाए तो आप पवित्र हो जाओगे। फैने पंकज बुदबुदे, कुछ भी गंदगी क्यों ना हो उसमें डुबकी लगाओ गंगा में, तो गंगा का पानी ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव मतलब क्या है, भगवान का गोलित अंगों का गोलित वस्तु। वो कैसे होता है, सेद जल, सेद मतलब क्या है, घाम पसीना आता है ना, तो गोलित शरीर का गोलित वस्तु सेद, वो सेद जल गंगा है, कारण अक्षय विष्णु, ये कारण समुद्र का एक बूंद गिरा गंगा बन गया। और दूसरा दृष्टि देते हैं जो कैलाश में शिव जी का कीर्तन में भगवान द्रवीभूत हो गया, और उस द्रवीभूत पानी को ब्रह्मा ने अपना कमंडलु में रखा, जब वामन देव ने ऊपर चरण लगाया तो ब्रह्मा उस कमंडलु का पानी से वामन देव का चरण धोत किया जो गंगा बन गया। ऐसे तीन चार कारण गंगा का उत्पत्ति का लिए बताते हैं शास्त्र में। तो मपगच्छन्ति नीर धर्म, उस गंगा का पानी में अगर कोई भी डुबकी लगाए वो पवित्र करेगा, गंदगी नहीं देखेगा, उसी प्रकार शरीरगत अगर किसी का कुछ दुराचारत्व है, शरीरगत दुराचार कैसे होगा, कोई अंधा हो सकता है, किसी को पैरालाइसिस हो सकता है, किसी के नाक में कॉप गिर सकता है, किसी का आंख में से पेंचड़ी निकल सकता है, तो बहुत सारे आंगिक दोष होते हुए भी उस भक्तों का हमें घृणा नहीं करना चाहिए। अगर उसको हम घृणा करते हैं तो हम अपराधी बन जाते हैं। कोई भक्त क्रोधी हो सकता है, तो शरीरगत मनगत वाक्यगत अगर किसी भक्त में अगर कोई दोष है, जैव धर्म में अनंत दास बाबा जी का वर्णन देते हैं, बहुत क्रोधी था, बात बात पर गुस्सा हो जाते थे, कोई अगर उल्टा पलटा कुछ बोलता था तो तुरंत गुस्सा हो जाते थे वो। इस पर क्रोधी स्वभाव का भी भक्त अगर हो तो ओपी किए तो सुदुराचार, ये दुराचार है, न कि दुराचार ब्रह्मचारी होकर के स्त्री संग बा भक्त बन के भीड़ी पीना दीक्षा लेने के बाद उपरांग खाना खाना जाए श्री श्री गुरु गौरांग ये सब दुराचार को दुराचार नहीं कहा गया, कि वो तो पतन का कारण है, कि सोबोरी मुनि का पतन कहा गया है, सोबोरी का दुराचार नहीं कहा गया है, सीधा लगेगा सोबोरी मुनि का पतन, दुराचार नहीं कहा गया है, तो पतन में आता है दुराचार शब्द। इस प्रकार व्यक्ति के अगर किसी कारणवश शारीरिकगत मनगत भाषागत अगर कोई दुराचार उसमें लक्षित तो हो रहा है, लेकिन अगर वो अनन्य भजन परायण है तो उसे तुम साधु समझो। जो व्यक्ति उनको साधु समझेगा वो व्यक्ति साधु बन जाएगा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, वो व्यक्ति साधु बन जाएगा, और जो उसको निंदा करेगा वो असाधु हो जाएगा। भक्तिनो ठाकुर जाम सभा में इस प्रकार व्याख्या करके दे दिया, सब लोग खुश हो गया, बहावा दिया। वहां से भक्तिनो ठाकुर आए नीचे आके सरस्वती ठाकुर को सब कुछ बताया, जहां मैं ऐसे ऐसे गया था और ऐसे ऐसे विचार करके आया। तो सरस्वती ठाकुर ने अपना जो डिसाइपल, बहुत बार एक कथा उन्होंने कीर्तन किए थे, ये सुदुराचार। यहां पर जो सोबोरी मुनि वैष्णव अपराध का कारण उसका दुराचार हो, अपना पार ऑफ द कर्म, दुराचार नहीं पार ऑफ द कर्म उसको भोग करना पड़ा, और वही पार ऑफ द कर्म जब उसका भोग का समापन हो गया तो उन्होंने क्या सोचा, ये अपना तीक्ष्ण तपस तीक्ष्ण के द्वारा अपना तपस्या किया, मैं क्या था और क्या बन गया, ये विचार करके उन्होंने संसार से उपरत होकर के वानप्रस्थ आश्रम ले लिया, उनका पत्नियां भी उनका संग ले लिया, और वहां जाकर कठोर तपस्या के द्वारा उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम चला गया। तो इस प्रकार देखा जाता है कि कभी कभी जो पार ऑफ द कर्मों का भोग के लिए हमें इस जगत में बहुत कुछ भोगना पड़ सकता है। जैसे कथा आता है एक मठाध्यक्ष था, मठ का अध्यक्ष, जैसे भागवत में कुलपति का वर्णन देते हैं, जो 10,000 शिष्यों को खिला सकता है वो कुलपति है, 10,000 शिष्य रहेगा उसको भरण पोषण उसका दायित्व है, वो शिष्य लोग बैठ के खाने वाला है, जिस दिन खाना बंद उस दिन उसको छोड़ के भाग जाएगा। जैसे दुर्वासा थे, ये सब लोग 10,000 शिष्य लोग घूमते थे, ईश्वर में मठ का अध्यक्ष थे, तो मठ का जितना सारे सब ब्रह्मचारी लोग थे सबका भरण पोषण का दायित्व उनका ऊपर था, ठाकुर जी का सेवा से लेकर के XYZ सब उनका ऊपर डिपेंड था। तो उन्होंने राजा का घर गया कुछ अर्थ मांगने के लिए, तो जो देखा उन्होंने वहां पहुंच के देखा जो राजा का लड़की का मर चुका है, आ लड़की का अंगों में इतना सारा अलंकार डाला राजा ने, प्यारा बेटी था, दुनिया भर का अलंकार डाल के उनको समाधि दे रहे हैं। मठाध्यक्ष सन्यासी है, उनका उस अलंकार पर लोभ हो गया, बोला अगर ये अलंकार मुझे मिल जाए तो हमारा मौत आस्था से चलेगा। अभी सन्यासी होने के नाते उसको वहां से ले भी नहीं सकता है, तो उन्होंने क्या किया, जब रात को समझ को समाधि दे दिया था तो रात को अपना वो खुदाई कर गला जो बिलचा वगैरह लेके जाके उस कबर को खुदाई करके उस लड़की का शरीर में जितना सारा अलंकार था सब ले लिया। अभी मृतदेह बात कर रहे हैं, बोला आप सन्यासी हो, आपने स्त्री परसों किया जो सन्यासी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपको दोबारा यद्यपि आप सत्कार्यों के लिए अलंकार ले रहे हो, असत्कार्य आपका नहीं मैं मानता हूं, हमें पर्स सुख आपको मिलेगा इस विचार आप में नहीं है, फिर भी आपने मुझे पर्स किया जो सन्यासी धर्म आपको नष्ट हो गया, इसलिए अगला जन्म में आप हमारे ऊपर अनुरक्त हो जाओगे और मैं आपको अपना प्रेम जाल में बंधन डाल देंगे। अब वो तो अलंकार लिया और सब कुछ सुना सन्यासी अपना मठ में आकर के, अच्छा सेवा शुश्रूषा से चलते रहा, मृत्यु किसी को रोकने से रोकने वाला है नहीं है, समय आएगा मृत्यु भी उस पर गया। दूसरा जन्म में उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद सन्यासी था, क्या क्वालिफिकेशन आप लोग समझते हो, बहुत शुद्ध सदाचारी ब्राह्मण, ऐसा सदाचार ब्राह्मण किधर मिलेगा नहीं, सदा सर्वदा भगवान का सेवा में निमग्न, नाम हुआ सिलोन मिश्र। अभी यही जो राजा का जो लड़की था वो हो गया चिंतामणि वेश्या, संसर्ग बस इस ब्राह्मण का उनका संयोग हो गया, शादीशुदा था, पत्नी को छोड़ के उनको अपर आसक्ति हो गया, और लास्ट में सुरेश आप लोग जानते हो लास्ट के ऊपर तर के जा करके उनका साथ संगति किया, उन्होंने कहा जितना आसक्ति हम में है इतना आसक्ति अगर आपका भगवान में हो जाए तो आप कितार तो हो जाओगे, था सन्यासी किसी कारणवश पारद्व का फलवश इस प्रकार हो गया, विवेक जागृत तो हो गया, उसी समय वेश्या को ताक करके वृंदावन का पथ में सवार हो गया, जाते जाते एक सेठानी का चक्कर में पड़ गया, जाके सेठ जी सेठ से कहा, उसका अतिथि बन गया, जाके वहां कहा ये क्या चाहिए, ना आपका पत्नी को हमको चाहिए, तो पत्नी को जाकर बोल जाओ जो अतिथि है उसका पास जाओ उसको सत्कार करो तुम जाकर के, बोले आप पतियों को कैसे इस प्रकार आदेश दे रहे हो, अतिथि को सत्कार करना तुम्हारा कर्तव्य, तुम जाओ तो सही, उन्होंने किया बोला आपका सिर में जो बालों में जो खोपा जो पिन लगाते हो वो दोनों पिन आप मुझे दे दो, वो पिन दोनों लेकर के अपना आंख को फोड़ दिया, बोले ये आंख खतरनाक है, आंख सदा सर्वदा विषय के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो उन्होंने ब्लास्ट में उसका नाम हुआ सूरदास, जो 700 साल तक भजन किए थे 700 ईयर्स, तो देखते हैं इस प्रकार जो पतन, ये पतन होने के बावजूद भी हमें किसी का भी निंदा करने का अधिकार नहीं है, अगर हम निंदा करते हैं तो उस निंदा का कारण हमारे ही पतन हो जाएगा, उस व्यक्ति को उद्धार हो सकता है लेकिन मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। दूसरा एक उदाहरण देते हैं, नारद जी दक्ष प्रजापति नारद जी को कहते हैं विषय दुख का कारण है, सबको जानते हैं यहां कोई नहीं जी कोई नहीं है, सबको जानते हैं विषय दुख का कारण है, दुख का कारण कैसा है बोल के कोई किसी को समझा नहीं सकते हैं, विषय भोग करते करते जो उसका उपलब्धि होता है उसका बाद जो उसका वैराग्य होता है वो वैराग्य चिरस्थायी होता है, बाकी वैराग्य क्षणस्थायी होता है, तो हे नारद आपने हमारा पुत्र को सन्यासी बना दिया, विषय जो दुख का कारण उसको मालूम तो है नहीं है, काल दिन वो सन्यासी गृहस्थ बन सकते हैं, यदि भी नारद का उपदेश सामान्य उपदेश नहीं है, मतलब काल तो सन्यासी से गृहस्थ बन सकते हैं, इसलिए विषय जो दुख का कारण है विषय भोग करने के बाद अगर वो सन्यास लेते थे तो उसका दोबारा पतन नहीं होता था, ये दक्ष प्रजापति का अच्छा बात कहा था, इसमें जो वैराग्य उत्पन्न होगा वो वैराग्य चिरस्थायी होगा। कहीं पर 50 शादी किया, मछली के साथ सेक्स कर रहा है, मछली देख करके 50 शादी कर लिया, 50 शादी करके 50 कितना हो गया, सबसे 600 लड़का हो गया, 5000 बच्चा हो गया, और 5000 बच्चा होने के बाद उनका बुद्धि खुला। क्या बोला? संसार दुखदाई है। इतना शब्दों के लिए 5000 बच्चा तैयार करना पड़ा उसको, इतना शब्द के लिए। संसार दुखदाई है, फिनिश, पूरा चैप्टर हो गया। तो यह समझाने के लिए उन्होंने इतना सब करने के बाद बोला, देखो भजन हम कर रहे थे और भजन करते करते वैष्णव निंदा किया गुरु का चरण में, उनका खाने में हम बाधा दे दिया, अभिशाप दे दिया, अभिशाप तक डाल दिया, जा तुम यहां आओगे तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। भगवान के लीला वही कदम का झाड़ जिंदा रह गया, क्योंकि वहां पर बैठ के गुरु जी अमृत का कलश लाकर वहां पर रुका था, अमृत का पर्स लगा था, इसलिए कालीना का विष से भी उस कदम का झाड़ को नष्ट नहीं हुआ था। भगवान वहां से कूदी मार के उसको निष्कासित किया। तो देखते हैं उसका निंदा करने से सोबोर में शादी किया, शादी करके इतना संसार करने के बाद क्या बोला, शादी मत क्या करो, शादी करोगे फंसताओगे। ये इनका पूरा अध्याय का समापन देते हैं। लास्ट में अपने आप को जो भजन किया था उन्होंने, उस भजन का जो फल सब कुछ करने के बाद लास्ट में अंतिम समय में उसको उस फल मिल गया, उन्होंने सब कुछ विचार करके देखा। इसलिए इस्कॉन में जो जो गृहस्थ बन गया है, जो बन गया है वह जो बनने बना है वह जो बनने जाने की इच्छा है, जो भी एक्स वाई जेड, वो भी किसी का निंदा करने का अधिकार हमारा नहीं है। वो किस दिन कैसे निकलेगा वो हम देखते रह जाएंगे, कब कैसे निकल जाएगा कोई समझ नहीं पाओगे। तो इसी करके वो निकलने का तारीखा उसके पास है, लेकिन उस तारीखा का अमल में लाना भी आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है सब कोई के पास ये बुद्धि भी नहीं होता भाई, चलो भाई कैसे कर, चलो जाने दो संसार होगा जाने क्या करना है क्या। ऐसा करके कोई मर भी जाता है कोई बात नहीं, नहीं मरने के बाद तो भी इस्कॉन का तो खाना दाना पीना तो कुछ दिन तो खाया है ना, वो कल्याण नहीं होगा, कल्याण ही होगा। और बुद्धिमान होगा ये जो शास्त्र संगति, इसलिए इस्कॉन का आप कुछ भी करो इस्कॉन में चलेगा, लेकिन तीन चीज कोई मिस नहीं करना चाहिए, मंगल आरती गुरु पूजा क्लास, ये अगर तीन आप करते हो तो डोंट माइंड एनीथिंग, सोचने कोई जरूरी नहीं आपका। और आप सब कुछ कर रहे हो तीन नहीं कर रहे हो ना तो आप खतरा में हो, आप अपने आपको कल्याण कभी नहीं कर पाओगे, कितना बड़ा पंडित क्यों ना हो जाए। बेसिक ये तीन चीज है, बेसिक में अगर हम रहेंगे हरि कथा सुनते रहेंगे, कोई गाली देगा कोई हमारा क्रिटिसाइज भी करेगा, नहीं सुनने की इच्छा होती भी हमको सुनना पड़ेगा। तो एक क्रिटिसाइज वगैरह करते करते क्या होगा, उसका विवेक खुलेगा, और बुद्धिमान है उस क्रिटिसाइज को क्या किस मिलेगा, हमारा स्वार्थ मिलेगा, अपना स्वार्थ मिलेगा, और अपना स्वार्थ में लेके उसको विवेक में जो ताला लग गया था वो ताला को खुलेगा, और धीरे धीरे वो आत्मवान बन जाएगा। और आत्मवान बनने के बाद वो अपना आप को संसार से निकाल लेगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कब निकल गया। ये शास्त्र हमको समझाते हैं, शास्त्रों को भी किसी का उपहास नहीं करते हैं, शास्त्रों को भी किसी का क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, कि शास्त्र खड़ग है, हमारा अज्ञान को दूरीभूत करता है। और इस अज्ञान का जब दूरीभूत होता है तब हम शास्त्र बाण बनते हैं, शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा बाण उत्तम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। शास्त्र युक्त शास्त्र युक्ति ना जाने दृढ़ श्रद्धा जाए मध्यम अधिकारी तो मध्यम अधिकारी तो हम इसको आगे पीछे हो गया, मध्यम अधिकारी तो महाभाग्यवान तर संसार जहार कोमल शब्द से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेह भक्त हो भी उत्तम। जो कोमल श्रद्धा है वो कनिष्ठ अधिकारी हो धीरे धीरे उत्तम भक्त बन सकता है। जो शास्त्र नहीं जानता है दृढ़ श्रद्धा है वो मध्यम अधिकारी है वो भाग्यवान होता है। जो शास्त्र जानता है दृढ़ श्रद्धा भी है वो उत्तम अधिकारी है वो संसार से निकल जाता है। ये सब शास्त्र हम सुनेंगे, सुनते सुनते हमारा भी अज्ञानंद का दूरीभूत हो जाएगा हम भी अपने आप को बचाने का कोशिश करेंगे। जो हो गया भाई सो हो गया, कोई बात नहीं, इसमें से हमको निकलना है। और धीरे धीरे वही गृहस्थ जीवन में रह करके निकल जाएगा। हरे कृष्णा। कोई समस्या समाधान है तो एक दो प्रश्न बोल सकते, बाकी नहीं, टाइम नहीं है। बोलो। अपराध का तारतम्य, जीव का तारतम्य हिसाब से अपराध का तारतम्य होता है। जिस प्रकार जीव है उस जीव का तारतम्य हिसाब से अपराध का तारतम्य होता है। कोई मुकुलित तो है, कोई विकुचित है, कोई अर्धविकुचित है, कोई अपना चेतन में नहीं है, तो जो जीव जैसे जैसे है उस चेतन धर्म का अनुपात में अपराध का तारतम्य होता है। जैसे चींटी जा रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति चींटी को मारा तो उसको पाप हो गया। आपने चींटी को मारा तो क्या होगा? आपका पाप नहीं होगा, आपका आपका अपराध का श्रेणी में आएगा। क्योंकि आपका ज्ञान हो चुका है कि हर जीव का देह में भगवान परमात्मा में विराजित तो है। तो जीवे सम्मान करो जाने कृष्ण अधिष्ठान। हम जीव को हरे कृष्ण बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उसमें भगवान निवासी तो, इसलिए हम तो उसको हरे कृष्ण कर रहे हैं ना। लोग क्या करते हैं? नमस्ते जी, जय राम जी की, ऐसे करते हैं ना। हम लोग क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जीव को जीव दृष्टि से ना देख करके उसको अंदर परमात्मा है, उसको हम लोग सम्मान करते हैं। तो हमारा और साधारण जीव का कर्म में अंतर होता है। इसलिए नारद व्यास को कहा था, तुम पाप कर रहे हो, वो नहीं बोला तुम अपराध कर रहे हो। तुम्हारा पाप का निष्कृति कैसे होगा जब पूछ क्या हो? तो हमारे लिए क्या होता है? अपराध। कर्मी के लिए पाप। तो चींटी एक साधारण वस्तु, कोई वैष्णव नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, तो हमें उसमें थोड़ा बहुत भोग करना पड़ सकता है। अभी कोई भक्त बन गया व बनने आया, तो इसका जो तारतम्य होता है, इस तारतम्य लेवल का तारतम्य हमारा अपराध का तारतम्य होगा। अभी इसका जैसे जो भक्त है उसका हिसाब से हमारा अपराध का तारतम्य गिनती करते जाओ। अपना अपना विचार करके देखो तो विचार का तारतम्य हिसाब से अपना अपना अपराध तो भोगना पड़ेगा। कभी कभी अपराध भोगने के लिए कोई कल्प भी लग जाता है, ऐसा नहीं 6-7 कल्प बीत जाता है अपराध भोगते बता हवा में रहता है, जन्म ही नहीं होता है। तो किसके लिए? पार्षद भक्त का चरण में अगर अपराध किया जाए तो, जो पार्षद भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध पार्षद, कभी कभी भगवान का आज्ञा से वो लोग भी धराधाम पर आते हैं, आना पड़ता है, तो उनका चरण में अगर हमारा अपराध हो जाता है तो हमें कोई कल्प तक भटकना पड़ेगा। कभी कभी ये भी होता है जो अपराध करते हैं, करने से तुरंत बाद भी भक्ति मिल जाता है, ये भी दृष्टांत है। महत चरण में अपराध अगर करेंगे और उस महत का अपराध ही हमारा मुक्ति का कारण बन जाता है। दो उदाहरण शास्त्र में है, एक जगमधा और एक राजा रघुगण। राजा रघुगण जड़भर का चरण अपराध करके मुक्त हो गया तुरंत, टाइम नहीं लगा। अरे जगमधा का तुरंत नित्यानंद का चरण अपराध करके तुरंत मुक्त हो गया। बाकी उदाहरण नहीं मिलता है। ये अपराध का तारतम्य, वैष्णव का तारतम्य हिसाब से अपराध का तारतम्य होता है। ये विचार रखो, ठीक है। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरु वैष्णव पिता वैष्णव।